कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को हमारे साथ बांटिए और प्रार्थना के साथ सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी आप जीत वचन को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम दूसरे राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा आहाब के स्थान पर अहज्याह उसका पुत्र राज कर रहा था और वह अति निष्ठा से अपने माता पिता के चरण कदमों पर अर्थात चरण चिन्हों पर चल रहा था और एक दिन वह अपनी खिड़की में से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। तो उसने एक्रोन के बाल जबूब देवता से मती कहने वालों के पास अपना भविष्य जानने के लिए दूत भेजे और एलियाह उनके मार्ग में हस्तक्षेप करके परमेश्वर का वचन सुनाया कि परमेश्वर को त्याग कर इस कारण का कार्य वह क्यों कर रहे हैं। उसने यह भी बताया कि इस गलती के कारण वह अवश्य ही मर जाएगा। मित्रों, जब एलियाह का समय आ गया था कि वह स्वर्ग में उठाया जाए, अतः वह यर्दन पार चला गया और वह नहीं चाहता था कि एलिशा वहां उसके साथ हो, परंतु एलिशा ने साथ जाने का हठ नहीं छोड़ा और परिणाम स्वरूप एलिया की तुलना में 2 गुना आत्मा उसे प्राप्त हुआ। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे कि एलिशा लौटा और बेतेल का मार्ग पकड़ा। आइए आप मेरे साथ निकालिए पुराने नियम की पुस्तक में से दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 23 पद। लिखा हुआ है, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठड्डा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि छोटे लड़के। स्वीकार्य विचार यह है कि ये छोटे छोटे मूल्यवान बच्चे थे। हम सब बच्चों को देखकर प्रफुल्लित हो उठते हैं। मेरे पास भी 2 बेटे हैं और वे सदैव मुझसे लिपटे रहते हैं। मेरे मित्रों, बच्चे वास्तव में आपके मन को हर लेते हैं। धर्मशास्त्र की यह घटना पढ़कर आपका दिल दहल उठता है। यदि ये बच्चे अबोध थे या बहुत छोटे थे या बहुत बड़े थे या किशोर भी थे, तो भी मैं स्वीकार करता हूँ कि एलिशा का यह काम निर्दयता का था जो शेष धर्मशास्त्र की शिक्षा के विरुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, बाइबल पढ़कर आप पाएंगे कि परमेश्वर बच्चों की स्नेहपूर्ण सुधि लेता है। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि कादेश बनने तक आकर इसराइलों ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। उनकी चिंता का कारण था, जिसे हम गिनती की पुस्तक 14 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारे स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? मेरे प्रियो, उन्हें अपने बच्चों पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया। परमेश्वर ने उनसे एक ही बात कही, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना था। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की चिंता नहीं करता, तो ठीक है, अब तुम जंगल में ही मरोगे और ये बच्चे जिनकी जान की तुम्हें चिंता है, वे ही प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, छोटे बच्चों के लिए जो शब्द इब्रानी भाषा में काम में लिया गया है वह है नार या नाहर। यह शब्द इसहाक के लिए काम में लिया गया है उस समय जब वह 28 वर्ष का था और इसी प्रकार यूसुफ के लिए भी जब वह 39 वर्ष का था। लूत के घर से स्वर्गदूतों को बाहर निकलवाने के लिए पुरुषगामियों के लिए भी यही शब्द का काम लिया गया है। धर्मशास्त्र में अन्य स्थानों में भी यह शब्द आया है, परंतु छोटे बच्चों के लिए नहीं जैसा हम सोचते हैं। उदाहरण के लिए देखें, पहले राजाओं के पुस्तक 12 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, रहुब्याम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति की जो उसके संग बड़े हुए थे। मेरे प्रियो, यहाँ जवानों के लिए जो इब्रानी शब्द काम में लिया गया है वह दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 23 पद का ही शब्द है जो छोटे बच्चों के लिए काम में लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह तो कोई नहीं मानेगा कि रहोबियाम ने छोटे छोटे बच्चों से परामर्श लिया था, नर्सरी स्कूल में जाकर बच्चों से मार्गदर्शन खोजा था। जी नहीं, वे युवा थे। शमूएल जब यिशै के घर पर गया था कि उसके एक पुत्र का राजा होने के लिए अभिषेक करे, तो आपको स्मरण होगा कि वे सब युवा थे। जब वे एक एक करके उसके सामने लाए गए, तब उसने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? मित्रों, यह शब्द लड़के वही शब्द है जो दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 23 पद में आया है। यह शब्द यिशै के युवा पुत्रों का संबोधन करवाता है। सबसे छोटा पुत्र दाऊद तो उस समय वहां नहीं था, अतः एलिशा का ठड्डा करने वाले लड़के बच्चे नहीं परंतु युवक थे। आप इस शब्द को धर्मशास्त्र के अनेक संदर्भों में पाएंगे और वहां इस शब्द का अनुवाद युवक ही किया गया है। अतः वे जवान लड़के थे जो उसे चिढ़ा रहे थे। मेरे मित्रों, वे ढोंगी भविष्यवक्ताओं के चेले थे। वे एक दल था जो एलिशा का ठड्डा कर रहे थे और उसकी निंदा कर रहे थे। वे कह रहे थे, हे चंदवे चढ़ जा। वे कहना क्या चाहते थे? वे उससे कह रहे थे कि वह भी एलिया की नाई करे। वे कह रहे थे, तू भी एलिया के समान स्वर्ग में चढ़ जा। वे धर्मशास्त्र के उस सत्य की निंदा कर रहे थे जिसके अनुसार परमेश्वर इस संसार से अपने लिए एक जाति तैयार करेगा। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, यह वही स्वभाव है जिसके बारे में पत्रस ने लिखा है कि अंतिम समय में संसार में ऐसा होगा। और यहाँ दूसरे राजाओं में इस घटना को इसलिए दिया गया है कि हम जान ले कि परमेश्वर उन्हें दंड देता है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन की निंदा करते हैं। दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठड्ढा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में पृथ्वी पर वे लोग होंगे जो मसीह के पुनः आगमन के विषय विश्वासियों का ठड्ढा करेंगे। वे कहेंगे, क्या हो गया? तुम तो उठाए ही नहीं गए, तुम तो यहीं भटक रहे हो, हम तो सोच रहे थे कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। ठड्ढा करने वाले ऐसी बातें करेंगे। आज वैसे ही अनेक जन कह रहे हैं, उसके आने के चिन्ह क्या है, क्या हुआ? यही कारण है कि हमें मसीह के पुनः आगमन की शिक्षा के बारे में अत्यधिक सावधान रहना है। मेरे प्रियो, हमें लंगड़ी टांग से नहीं चलना है, हमें इस विषय में रूढ़िवादी नहीं होना है, हमें अति सावधानी पूर्वक इसकी चर्चा करना है जैसा परमेश्वर का वचन सावधान है। अतः दूसरे राजाओं की पुस्तक में हम मसीह के आगमन के निंदकों को दंड का एक छोटा सा चित्रण देखते हैं। यह एक भयानक न्याय है। आइए हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकल कर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के इस सूरत का इनकार करना प्रचारक के लिए अत्यधिक भयानक बात है। मसीह के प्रथम आगमन पर दिए गए कार्यों को अस्वीकार करना भी भयंकर बात है। मसीह यीशु के पुनः आगमन की निंदा करना भी भयानक पाप है। इसका दंड अत्यधिक कठोर होगा। ध्यान दीजिए कि उन्होंने एलिशा को चंदुआ कहा, अतः हम जान गए हैं कि वह गंजा था। परमेश्वर के वचन में दंड के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, अतः हमारे लिए आवश्यक है कि तथ्यों को यथाक्रम व्यवस्थित करें। जब आप यह जान लेंगे कि हम इस संबंध या अंश में क्या कह रहे हैं, तो शेष धर्मशास्त्र में असंगत कुछ भी नहीं है। उसने उन्हें श्राप दिया। यहाँ एलिशा एलिया जैसा व्यवहार प्रकट करता है, वह प्रभु यीशु मसीह के सदृश प्रकट है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आगे वह कहता है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। हम इसे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 23 पद में पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, यह दंड है। आज न्याय व्यवस्था हमारे देश की दुर्दशा देखें। हम कब नींद से जागेंगे हमें नहीं मालूम। आतंकवादियों को कब दंड दिया जाएगा नहीं मालूम। मैं आपको बता दूं कि जब रेचनियों ने अपना काम पूरा कर लिया, तब फिर किसी ने एलिशा का ठड्ढा नहीं किया। निश्चय ही आप इसे जान लीजिए। मेरे प्रिय, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 और 4 से देखेंगे एलिशा के चमत्कार। दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शिमरोन में राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। यहोराम अहज्याह का भाई और आहाब एवं इजेबेल का पुत्र था। अहज्याह निसंतान मर गया था। आगे हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनाई हुई बाल की लाठ को दूर किया, तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इसराइल से भी करवाए लिपटा रहा और उनसे ना फिरा। मित्रों, उसने आहाब की नाई पाप तो नहीं किया, परंतु यारोबाम के पाप के मार्ग पर चला। सोने के बछड़े की उसने भी पूजा की। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, मोआब का राजा मेशा बहुत ही भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के राजा को 100,000 बच्चे और 100,000 मेढ़ों का ऊन कर की रीति पर दिया करता था। जब अहाब मर गया, तब मोआब के राजा ने इसराइल के राजा से बलवा किया। मित्रों, मोआब इसराइल के अधीन था और कर देता था। अहाब के मरने के बाद मोआब ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया और कर देने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप यहोराम ने यहोशापात के साथ संधि करके मोआब को फिर से अपने अधीन करना चाहा। उन्हें अपने सेना के लिए पीने का पानी नहीं मिला, अतः उनकी सेना का आगे बढ़ना ही नहीं रुका। मोआब से हारने के भी आसार दिखाई देने लगे। यहोशापात परमेश्वर का भय मानता था, अतः उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से मार्गदर्शन खोजना चाहा। काश वह विधर्मी यहोराम से संधि करने से पूर्व ही परमेश्वर की इच्छा खोजता। मेरे मित्रों, एलिशा की प्रतिक्रिया बड़ी ही रोचक है। वह यहोराम के प्रति अपनी घृणा को प्रकट करता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, तब एलिशा ने इसराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इसराइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया है कि इनको मोआब के हाथ कर दे। एलिशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। मित्रों, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की कि विजय उन्हीं की होगी, उन्हें पीने का पानी भी मिलेगा और मोआब पूरी तरह उनके अधीन हो जाएगा। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गढ़े ही गढ़े हो जाएं। मेरे मित्रों, गढ़े खोदने का प्रयोजन यह था कि पानी उनमें जमा हो जाए। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 पद में, विहान को अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। मेरे मित्रों, मोआब का सीमा सुरक्षा बल इसराइल की बढ़ती सेना को देख रहा था। तब हम आगे देखेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 22 और 23 पद में, विहान को जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मुआवियों की परली ओर से लोहू सा लाल दिखाई पड़ा, तो वे कहने लगे, वह तो लोहू होगा, निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नाश हो गए हैं, इसलिए अब हे मुआवियों लूट लेने को जाओ। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उन्होंने सोचा कि वैरी की सेना आपस में लड़ गई, इसलिए चारों ओर खून ही खून दिखाई दे रहा है, अतः वे युद्ध करना तो भूल गए और लूट का माल लेने के लिए भाग आए। इसराइल को इससे विशेष लाभ हुआ, अर्थात उन्होंने उन्हें मार डाला। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 26-27 पद में हम पढ़ते हैं, यह देख कर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होमबलि चढ़ाया। इस कारण इसराइल पर बड़ा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। मेरे प्रियो, नरबलि मोआबियों का आम अभ्यास था। उसने किमोश देवता को नरबलि दी कि वह उन्हें युद्ध में विजय प्रदान करे, उनकी रक्षा करे। यह इसराइल की विशिष्ट विजय थी और उन्हें बोध हो गया होगा कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान एवं अनुग्रहकारी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 4 में एलिशा के 4 चमत्कारों का वर्णन देखेंगे और विशेष करके विधवा के घर में तेल की वृद्धि। आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि एलिशा उस विधवा के पति को जानता था। उसने एलिशा से कहा कि वह एक सच्चा भक्त था, वह उनके ऊपर ऋण का बोझ छोड़कर मर गया और अब साहूकार उसे परेशान कर रहे हैं। उस युग की व्यवस्था ऐसी थी कि यदि उधार लेने वाले के पास संपदा नहीं है तो वह उसके बदले में उसे या उसके पुत्र को ऋण के स्थान में ले सकते थे। अतः साहूकार को वैधानिक अधिकार था कि वह उस विधवा के पुत्रों को दास बनाकर ले जाए। मित्रों, हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद में, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिशा को उस छोटे परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का बोध हुआ। मूसा की व्यवस्था में विहित है कि विधवाओं और अनाथों की सुधि ली जाए और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। मित्रों, यहाँ पर देखा जाए तो उनके घर में तो एक तेल का कारखाना ही खुल गया है। दूसरे राजाओं के पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तो अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। मेरे मित्रों, यह सारपत की विधवा के घर में एलिया के आटे के चमत्कार से भी बड़ा चमत्कार था। हम आगे देखते हैं एलिशा और सुनेम वासी धनी स्त्री। सुनेम में रहने वाली यह धनी स्त्री बड़े भक्ति भाव से एलिशा की सेवा करती थी। जब भी वह वहां से आता जाता था, तो आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद में। लिखा है, और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, तो हम भीत पर एक छोटी ऊपरी कोठरी बनवाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टीका करे। मेरे मित्रों, उस समय से ही अनेक भक्तों के घरों में भविष्यद्वक्ता की कोठरी बनने लगी। मैं भी जगह जगह बाइबल सभाएं करने के लिए जाता हूं और मुझे भी कई ऐसे कोठरियों में ठहरने का मौका मिलता है जहां उन्होंने परमेश्वर के भक्तों के लिए घर बनाए हैं। मेरे प्रियो, ऐसे अनेक अच्छे मसीही जन हैं जिनके घरों में प्रचारकों और सेवकों के लिए विश्राम कक्ष है। जहां उनकी सेवा की जाती है और उन्हें विश्राम मिलता है। आप नहीं समझ पाएंगे कि आज परमेश्वर के जनों के जीवन में इसका कैसा महत्व है। एलिशा ने इस स्वागत भरे परिवार को सराहा और एक दिन लेटे लेटे उसके मन में विचार आया कि इस सेवा भाव स्त्री के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। उसने उसे प्रतिफल देने का निर्णय लिया। एलिशा ने गेहजी अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, दूसरी राजाओं की पुस्तक 4:14-17 में पढ़ते हैं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु के दिन में पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। और स्त्री को गर्व रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। सुनेमेन वासी स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया। आगे हम देखते हैं कि उसका पुत्र फिर से जिलाया जाता है। अब वह बालक बड़ा हो गया था, परंतु एक दिन अकस्मात ही वह मर गया। एलिशा ने उसे फिर जीवित किया। उसकी विधि भी वही थी जो एलिया ने काम में ली थी। पहले राजा के पुस्तक 17 में हमने देखा है, मृतक के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा जीवन। यहाँ एक महान सिद्धांत है, हम अपने पाप और अपराध में मरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध हमें जीवन देता है। उसमें हमारा जीवन है, वह जीवन है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि हंडे में जहर। इस अध्याय में एलिशा का चौथा चमत्कार भविष्यद् वक्ताओं के चेलों के लिए भोजन से संबंधित है। ये चेले एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा के विद्यार्थी थे। यह अकाल के समय की घटना है। एक विद्यार्थी जंगल में साग तोड़ने गया और उन्होंने कुछ वहां पाया और उसे पकाने के लिए आग पर चढ़ा दिया। तब क्या हुआ, आइए हम देखें। दूसरे राजाओं की पुस्तक 4:40-41 में, तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हांडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में माहुर है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलिशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हांडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हांडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। मेरे मित्रों, एलिशा ने उसे हानि से मुक्त किया। हम देखते हैं 100 मनुष्यों के लिए चमत्कार का भोजन। मित्रों, यरोबाम ने तो लेवियों को देश से बाहर कर दिया था, अतः एक व्यवस्था पालक भक्त अपनी फसल का पहला फल भविष्यवक्ताओं के चेलों के पास लाया, क्योंकि भेंट मात्रा में बहुत कम थी। इसलिए सेवक 100 मनुष्य में उसे कैसे बांटे, एक समस्या वहां पर थी। लेकिन हम पढ़ते हैं दूसरे राजा की पुस्तक 4:43-44 में, उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। मेरे मित्रों, इसे पढ़कर हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के उन चमत्कारों का स्मरण होता है, जब उसने 4,000 पुरुषों और फिर 5,000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछलियों से भोजन खिलाकर तृप्त किया था। मेरे मित्रों, इससे यह स्पष्ट है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वह आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करे। यदि हम उसके पास आते हैं और अपनी समस्याओं को उसके सामने रख देते हैं, अर्थात हम खुलकर बताते हैं, तो निश्चय जाने कि वह उसका हल करता है। जिस प्रकार इस स्त्री ने और विधवा स्त्री ने अपनी समस्याओं को रखा और परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से उसका हल उन्हें दिया। आज यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आज भी आपके उस परेशानियों का हल करने में सक्षम है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष प्राप्त किए हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी इस भक्तिन स्त्री के समान अपने जीवन को उसके निकटता में रखें और उन महान आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें जो वह आपको देना चाहता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
भटका राही जीवन में, मैं भटका।